हरे कृष्ण श्रीमद् भागवतम लेक्चर नंबर 7। ये हमारा परम सौभाग्य है कि हम श्रीमद् भागवतम के माध्यम से चैतन्य महाप्रभु की दिव्य लीलाओं का श्रवण कर रहे हैं, क्योंकि श्रीमद् भागवतम केंद्र 11 चैप्टर नंबर 5 टेक्स्ट नंबर 32 में बताया गया है, कृष्ण वर्णम त्रिशा कृष्णम सागोपांगास्त्र पाशदं यज्ञ संकीर्तन प्रायहि यजन्ति हि सुमेधसः। राजा निम्मी की सभा में श्री करभाजन मुनि योगेश्वर ने कली के आराध्य देव का वर्णन करते हुए कहा, यानी कि जब राजा निमि ने करभाजन मुनि से पूछा था कि कलयुग में किस आराध्य देव का की उपासना की जाएगी, तो फिर करभाजन मुनि ने अत्यंत ही सुंदर उत्तर दिया कि संकीर्तन प्रदान पूजा के द्वारा गौर कांति कृष्ण वर्णम, यानी कि वो कृष्ण का वर्णन करेंगे त्रिशा कृष्णम, लेकिन वो कृष्ण कलर के नहीं होंगे। देखो कृष्ण वर्णम दो तरह का होता है, एक तो यानी कि कृष्ण का वर्ण हो यानी कि कृष्ण का कलर हो, लेकिन जो कृष्ण का वर्णन करते वो भी तो कृष्ण वर्णम हुए, और स्वयं गौर कांति होंगे, और किसके साथ होंगे, सागोपांगास्त पार्षदम, अपने गोप और पार्षदों के साथ होंगे, जैसे नित्यानंद प्रभु अद्वैताचार्य श्रीवास ठाकुर गदाधर पंडित इनके साथ होंगे, और यज्ञ संकीर्तन प्राय ही इस कलयुग में प्राय दूसरे जितने भी यज्ञ हैं जिनमें यज्ञ में बलि दी जाती है ये सारे यज्ञ जो हैं वो निषेध है, लेकिन इस कलयुग का यज्ञ कौन सा है, भगवान कहते हैं श्रीमद् भगवत गीता चैप्टर 10 भगवान कहते हैं यज्ञानां जप यज्ञोऽस्मि। वास्तव में भक्तों जो सबसे सर्वश्रेष्ठ यज्ञ है वो भगवान के पवित्र नाम का संकीर्तन है। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इस कलयुग में इसी महामंत्र के यज्ञ की संस्तुति की गई है, और शास्त्र कहता है यज्ञ संकीर्तन प्राय ही यजंती ही सुमेधसा। मेधसा का मतलब होता है बुद्धिमान, और सुमेधसा कहते हैं जिसके पास बहुत बहुत मात्रा में बुद्धि होती है ना, वो क्या करेंगे कलयुग में, भगवान कहते हैं यज्ञ, ये जो बता रहे ना करभाजन मुनि वो बोल रहे हैं, वो यज्ञ करेंगे जो बहुत ज्यादा अक्लमंद होंगे ना कलयुग में, वो भगवान के संकीर्तन प्रदान पूजा के द्वारा गौर कांति विशिष्ट भगवान की उपासना करेंगे, जो सदा कृष्ण के नाम रूप गुण लीलाओं का वर्णन करेंगे, और जो अपने पार्षदों द्वारा कृष्ण नाम प्रदान करके असुरों को वैष्णव बनाकर उनका उद्धार करेंगे। यहाँ पर श्री गौर अवतार का स्पष्ट वर्णन किया है उन्होंने, और हम उसी कलयुग के प्रधान अवतार श्री चैतन्य महाप्रभु के विषय में पढ़ रहे हैं। तो अब तक हमने पढ़ा कि किस प्रकार परम कृपालु चैतन्य महाप्रभु हम जैसे पतितों का उद्धार करते करते जगन्नाथपुरी की ओर जा रहे हैं, और कभी क्षीरचोर गोपीनाथ तो कभी साक्षी गोपाल मंदिर भगवान के दर्शन कर रहे हैं, और उनकी कृपा से वृंदावन के जितने भी लीला स्थल लुप्त हो गए थे वो फिर से प्रकाशित हो रहे हैं, और आज हम उस क्रम को आगे बढ़ाते हैं महाप्रभु की इन विशिष्ट लीलाओं का संपूर्ण आस्वादन करने के लिए गुरु और गौरांग से कृपा की याचना करते हुए मंगलाचरण करेंगे, ताकि हम जो अध्ययन कर रहे हैं उसका पूरा पूरा लाभ प्राप्त हो सके, जो कि है कृष्ण प्रेम की प्राप्ति। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय, ॐ नमो भगवते वासुदेवाय, ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनाशलाकया चक्षुरोन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्रीचैतन्यामनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा महयं ददाति स्वपदान्तिकम्। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जय मुदीरये। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर भवति नैष्ठिकी। पञ्चतत्त्वात्मकं कृष्णं भक्तरूप स्वरूपकं भक्तावतार भक्ताख्यं नमामि भक्तशक्तिकम्। वंशाकल्पतरुभयश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानन्द श्री अद्वैत गदाधर शिवासदि गौर भक्तवृन्द। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। तो कल हमने पढ़ा कि महाप्रभु अपने समस्त संगियों को छोड़कर अकेले ही जगन्नाथपुरी की ओर चले गए और जब वे जगन्नाथपुरी में जगन्नाथ मंदिर में प्रविष्ट हुए तो वे दिव्य आनंद से अभिभूत होने के कारण मंदिर की फर्श पर अचेत होकर गिर पड़े। मंदिर के रक्षक महाप्रभु के दिव्य भाव को समझ न पाए लेकिन वहां पर सार्वभौम भट्टाचार्य नाम के महान पंडित उपस्थित थे, अतः वे समझ गए कि जगन्नाथ मंदिर में प्रवेश करते ही उनका अचेत होना कोई सामान्य बात नहीं हो सकती। सार्वभौम भट्टाचार्य ओडिशा के राजा महाराजा प्रताप रुद्र के दरबार में नियुक्त मुख्य पंडित थे। वे श्री चैतन्य महाप्रभु की तरुणावस्था की कांति से आकृष्ट हुए और समझ गए कि ऐसी दिव्य समाधि विरले ही प्रदर्शित होती है और केवल उच्च कोटि के भक्तों द्वारा प्राप्त की जा सकती है जो पहले से संसार की पूर्ण विस्मृति में दिव्य धरातल पर आते हैं। केवल मुक्त आत्मा ही ऐसे दिव्य भाव प्रदर्शित कर सकते हैं। भट्टाचार्य परम विद्वान थे, अतः वे अपने परिचित दिव्य साहित्य के प्रकाश में इसे समझ गए। अतएव उन्होंने मंदिर के रखवालों से कहा कि वे इस अज्ञात सन्यासी को कोई विघ्न ना पहुंचाएं। उन्होंने महाप्रभु को अपने घर ले चलने के लिए कहा जिससे मूर्छित अवस्था में आगे उनका निरीक्षण किया जा सके। महाप्रभु को तुरंत ही सार्वभौम भट्टाचार्य के घर पर ले जाया गया। उस समय सार्वभौम भट्टाचार्य सभा पंडित अर्थात राज्य की ओर से संस्कृत साहित्य के प्रमुख होने के कारण अत्यधिक शक्ति संपन्न थे। वे भगवान चैतन्य के दिव्य भावों की सूक्ष्म परीक्षा करना चाहते थे, क्योंकि कभी कभी धूर्त भक्त अबोध जनता को आकृष्ट करने के लिए और उनसे लाभ उठाने के उद्देश्य से भौतिक रूप से अद्भुत भाव विकारों का की नकल भी करते हैं। भट्टाचार्य जैसे विद्वान ऐसे धूर्तों का पता लगाना चाहते हैं और पता चल जाने पर तुरंत ही त्याग देते हैं। जब श्री चैतन्य महाप्रभु पहली बार जगन्नाथ मंदिर में आए, प्रवेश हुआ, तो जगन्नाथ भगवान को देखकर वो भाव आवेश में आ गए। उनको ऐसा लगा कि ये तो वही कृष्ण है, क्योंकि चैतन्य महाप्रभु सदैव राधा भाव में होते थे और कृष्ण को देखकर वो अपने आप को संभाल ना सके, कंट्रोल ना कर सके। और इतने सारे पंडे वगैरह खड़े होते ना जगन्नाथपुरी के यहाँ द्वार पे, सबको आगे उनको हटा हटा के डायरेक्ट से गए और जगन्नाथ भगवान को आलिंगन कर दिया। और उनको आलिंगन करते ही चैतन्य महाप्रभु मूर्छित होकर गिर गए। बाकी सब पंडित तो सोचने लगे कि ये कौन सा तरीका है, भगवान के पास इस तरह थोड़े ना आया जाता है। लेकिन वहाँ पर सर्वभौम भट्टाचार्य जो बहुत ही विद्वान थे और वहाँ प्रताप रुद्र के जो राज्य था ना उसमें बहुत बड़े पोस्ट पर थे, उन्होंने जब चैतन्य महाप्रभु को देखा तो इतनी कम आयु के सन्यासी की जो क्रांति थी उनके फेस पर, उस तेज को देखकर वो समझ गए कि ये कोई साधारण व्यक्ति नहीं हो सकता, ये तो जरूर कोई दिव्य व्यक्ति है। और उन्हें चैतन्य महाप्रभु को अपने घर लेकर गए उसी मूर्छित अवस्था में, ताकि उनकी केयर कर सके। और उसके बाद कुछ लोग, यहाँ पर कहा गया श्री प्रभुपाद जी कहते, कुछ लोग है ना इस तरह के भावों की नकल करते हैं ताकि मूर्ख जो सादी सीधी जनता होती है ना, इनोसेंट होती है, तो उनका भाव आकर्षित करने के लिए इस तरह के नाटक करते हैं। तो सर्वभौम भट्टाचार्य क्या चाहते थे कि मैं परीक्षा कर लूं कि ये सन्यासी है क्या। वास्तव में हमें सदैव सावधान रहना चाहिए कि हम जिस भी भक्त के संपर्क में हैं कि वो वास्तव में भक्त है या फिर हमें छलना चाहता है या फिर मूर्ख बनाना चाहता है। तो एक भक्त को सदैव सचेत रहना चाहिए कि हम जिसका संग कर रहे हैं क्या वो वाकई में भक्त है। तो भट्टाचार्य ने श्री चैतन्य महाप्रभु की परीक्षा शास्त्रों में बताए गए समस्त लक्षणों के आधार पर की। उन्होंने एक वैज्ञानिक की तरह परीक्षा की, मूर्ख भाव आवेश युक्त की व्यक्ति की तरह नहीं। उन्होंने आमाशय की गति, हृदय की धड़कन तथा नथुनों के श्वास की निरीक्षण किया। उन्होंने महाप्रभु की नाड़ी भी देखी और यह पाया कि उनकी शारीरिक क्रियाएं पूर्णतया रुकी हुई हैं। उन्होंने नासिकाओं पर रुई का फहा रखा और देखा कि कुछ कुछ श्वास चल रहा है, क्योंकि रुई के नरम रेशे हिलडुल रहे थे। इस तरह वे जान गए कि महाप्रभु की मूर्छा समाधि असली है, अतएव वे उनका उपचार निर्धारित विधि से करने लगे। लेकिन महाप्रभु का उपचार विशेष ढंग से ही होना था, वे तो अपने भक्तों द्वारा भगवान नाम का आचरण करने पर ही होश में आ सकते थे। और यह विशिष्ट आचरण सर्वभौम भट्टाचार्य को ज्ञात ना था, क्योंकि वे महाप्रभु को अभी नहीं जान पाए थे। जब भट्टाचार्य ने उन्हें पहले पहल मंदिर में देखा तो उन्होंने उन अनेक यात्रियों में से उन्हें एक यात्री समझा था। इसी बीच महाप्रभु की संगियों ने, जो उनसे कुछ ही बात मंदिर में पहुंचे, महाप्रभु के दिव्य भावों के विषय में तथा भट्टाचार्य द्वारा ले जाए जाने का समाचार सुना। यात्रीगण अब भी मंदिर में इस घटना के विषय में गपशप कर रहे थे, लेकिन इन यात्रियों में से एक यात्री संयोगवश गोपीनाथ आचार्य से मिल चुका था, जिनका परिचय गदाधर पंडित से था। इन्हें गोपीनाथ आचार्य से यह पता चला कि महाप्रभु सर्वभौम भट्टाचार्य के निवास स्थान पर मूर्छित अवस्था में पड़े हुए हैं। श्री भट्टाचार्य गोपीनाथ आचार्य के साले थे। गदाधर पंडित ने मंडली के सभी सदस्यों का परिचय गोपीनाथ आचार्य से कराया, जो उन्हें भट्टाचार्य के यहाँ ले गए, जहाँ महाप्रभु आध्यात्मिक समाधि में मूर्छित पड़े थे। तब मंडली के सभी सदस्यों ने सदा की भांति हरिनाम का जोर जोर से उच्चारण किया, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इसे महाप्रभु को पुनः चेतना प्राप्त हुई। अब भट्टाचार्य जो थे, सर्वम भट्टाचार्य महाप्रभु को घर लेकर गए तो उसकी परीक्षा कर रहे थे कि कहीं ये ढोंग तो नहीं कर रहा है, ये जो अभी समाधि में है या फिर अभी बेहोश हो गए हैं, तो कि ढोंग तो नहीं कर रहे। तो उसकी नाड़ी चेक की, उसके दिल की धड़कन चेक की और चैतन्य महाप्रभु के नासिका के सामने रोई रखी तो पता चला कि श्वास तो चल रही है लेकिन ये मूर्छित है, ये कोई नाटक नहीं कर रहे हैं। लेकिन वो अब उनको समझ में नहीं आता, वो तो जैसे साधारण लोग को कैसे हम मेडिसिन वगैरह देखकर सही करते हैं, तो उसकी कोशिश कर रहे थे। लेकिन चैतन्य महाप्रभु कोई साधारण व्यक्ति नहीं थे, वे केवल महामंत्र के गान से ही प्रसन्न होते हैं। याद रखिए, अब यदि गौरंग महाप्रभु को प्रसन्न करना है तो उसका एक ही तरीका है कि आप भगवान के पवित्र नाम का जप कीजिए। महाप्रभु जप के द्वारा कृपा प्रदान करते हैं और इस कलयुग में केवल एक ही मार्ग है भगवान को प्रसन्न करने का, भगवान के पवित्र नाम का उच्चारण करना। तो जैसे दूसरे जितने भी संगी थे वो पीछे रह गए थे ना, वो जब मंदिर में आए तो उनको पता चला चैतन्य महाप्रभु सर्वम भट्टाचार्य के घर पे गए हैं, तो वो भी वहां पर गए और जैसे देखा चैतन्य महाप्रभु भाव आवेश में थे, मूर्छित थे, तो उन सभी ने जोर जोर से महामंत्र का संकीर्तन स्टार्ट किया और चैतन्य महाप्रभु फिर से सचेत हो गए। तत्पश्चात भट्टाचार्य ने मंडली के समस्त सदस्यों का स्वागत किया जिनमें नित्यानंदा प्रभु भी सम्मिलित थे। वास्तव में बात तो ये नित्यानंदा प्रभु की कृपा है कि हम भगवान और चैतन्य महाप्रभु के विषय में कुछ जान सकते हैं, क्योंकि वृंदावन दास ठाकुर अपनी किताब चैतन्य भागवत में कहते हैं कि नित्यानंदा प्रभु को ही अधिकार है कि वो चैतन्य महाप्रभु का प्रेम हमें प्रदान कर सके। चैतन्य महाप्रभु कृष्ण प्रेम प्रदान करते हैं और महाप्रभु के चरणों में आसक्ति केवल नित्यानंद प्रभु की कृपा से ही संभव है। हम देखते हैं रघुनाथ दास ठाकुर जो कि बार बार चैतन्य महाप्रभु के चरणों में आने का प्रयास करता था, लेकिन जब तक उनके ऊपर नित्यानंद प्रभु की कृपा नहीं हुई ना, तब तक चैतन्य महाप्रभु ने उन्हें स्वीकार नहीं किया। तो इसलिए यदि हमें चैतन्य महाप्रभु की कृपा प्राप्त करने की आवश्यकता है, यदि हम ऐसा चाहते हैं, तो हमें सबसे पहले नित्यानंद प्रभु के श्री चरणों में अपना प्रेम समर्पित करना होगा। नित्यानंद प्रभु कहते थे मैं कृष्ण प्रेम के गोडाउन का दरवाजा तोड़कर पूरी दुनिया में कृष्ण प्रेम फैला दूंगा। ये चैतन्य महाप्रभु की आज्ञा थी कि कृष्ण प्रेम पूरी धरती ते आचयत नगरादि ग्राम सर्वत्र प्रचार होय बे मोर नाम। ये चैतन्य महाप्रभु की इच्छा थी और नित्यानंद प्रभु ने कहा ये महाप्रभु की इच्छा को मैं पूरा करूंगा, मैं समस्त प्राणियों के हृदय में चैतन्य महाप्रभु के लिए प्रेम उत्पन्न करूंगा। तो यदि हमें महाप्रभु के लिए अपने हृदय में प्रेम प्रकाशित करना है तो हमें नित्यानंद प्रभु के श्री चरणों को कस के पकड़ लेना चाहिए, क्योंकि नीताय पद कमल कोटि चंद्र सुशीतल ईछाया जगत जुड़ाए हेनो नीताय बिने भा राधा कृष्ण पाए बिना दृढ़ा कोरी धरो नितय पा दृढ़ा कोरी धरो नितय पा। यदि हम नित्यानंद प्रभु के श्री चरणों को दृढ़ता से पकड़ लेंगे तो फिर महाप्रभु का प्रेम, महाप्रभु का आशीर्वाद, महाप्रभु का संग, महाप्रभु हमें प्राप्त हो जाएंगे। और जब महाप्रभु का आशीर्वाद प्राप्त हो जाएगा तो कृष्ण प्रेम हमसे दूर नहीं रह सकेगा, क्योंकि महाप्रभु का अवतरित हुए होने का एकमात्र कारण है कृष्ण प्रेम प्रदायते, कि वो भगवान श्री कृष्ण का सुप्त प्रेम जो हमारे हृदय में करोड़ों करोड़ जन्मों से सोया हुआ है उसी को जगाने के लिए महाप्रभु कहते हैं जीव जागो जीव जागो गौर चंद भोली कच नित्र जाओ माया पिछा चीर खोली जागो जीव जागो, गारा चंद बोले। और जब सारे भक्तजन सर्वभौम भट्टाचार्य के घर पे आए, संकीर्तन किया, महाप्रभु सचेत हो गए, तो सर्वभौम भट्टाचार्य ने उन सबका बहुत बहुत आतिथ्य किया। तब महाप्रभु सहित मंडली समुद्र में स्नान करने गई और भट्टाचार्य ने काशी मिश्र के घर में उनके रहने तथा भोजन की व्यवस्था कर दी। उनके बहनोई गोपीनाथ आचार्य ने भी मदद की। उन साले बहनोई दोनों ने महाप्रभु की दिव्यता को लेकर मैत्रीपूर्ण बातें होती रहती थी और गोपीनाथ भट्टाचार्य ने अपने पूर्व परिचय के कारण अपने तर्कों से स्थापित करना चाहते थे कि महाप्रभु भगवान स्वरूप हैं और भट्टाचार्य ने उन्हें एक महान भक्त सिद्ध करना चाहा। यानी कि अब गोपीनाथ, क्योंकि पहले से ही जानते थे उनको गोपीनाथ आचार्य, तो बताना चाह रहे थे कि महाप्रभु क्या है, भगवान स्वरूप है, लेकिन भट्टाचार्य क्या कह रहे थे कि वो महान भक्त हैं। शास्त्रों की दृष्टि से दोनों अपने अपने तर्क दे रहे थे। वे किसी भावुकता से प्रेरित नहीं थे। ईश्वर के अवतारों को प्रामाणिक शास्त्रों के आधार पर निश्चित किया जाता है, ना कि मूर्ख सिरफिरे जनमतों से। भगवान चैतन्य ईश्वर के वास्तविक अवतार थे, किंतु सिरफिरों ने इस युग में शास्त्रों का हवाला दिए बिना ही अनेक तथाकथित ईश्वर अवतारों की घोषणा कर दी है। लेकिन सर्वभौम भट्टाचार्य या गोपीनाथ आचार्य ऐसी मूर्खतापूर्ण भावुकता से प्रेरित नहीं हुए। इसके विपरीत उन दोनों ने उनकी भगवत्ता को प्रामाणिक शास्त्रों के बल पर स्थापित करने या स्वीकार करने का प्रयत्न किया। अब क्योंकि भट्टाचार्य जो सर्वधम भट्टाचार्य, वो तो फर्स्ट टाइम चैतन्य महाप्रभु से मिले थे। गोपीनाथ जी जो थे वो तो कब से परिचय थे, तो वो दोनों शास्त्रों के अनुसार ये साबित कर रहे थे कि चैतन्य महाप्रभु वास्तव में भगवान का अवतार है या भगवान के भक्त अवतार है। तो ये हमें हमेशा सचेत रहना चाहिए। हम किसी को भी भगवान का अवतार मान लेते हैं कि ये भगवान का अवतार है, ये बाबा भगवान का अवतार है, वो ये ऐसा नहीं करना चाहिए। भगवान के जो अवतार हैं उनका शास्त्रों में पहले से उल्लेख है, सारे शास्त्रों में। अब हम जैसे हमने अभी पढ़ा श्रीमद् भागवतम 11वां स्कंद 5वां अध्याय श्लोक नंबर 32 में चैतन्य महाप्रभु की आने की घोषणा। इसके अतिरिक्त बहुत सारे शास्त्रों में जब हम चैतन्य चरितामृत पढ़ेंगे और चैतन्य भागवतम महाप्राण का ना आस्वादन करेंगे, तो हमें पता चलेगा कि कितने सारे शास्त्रों में चैतन्य महाप्रभु के आने के विषय में और उनके भगवान होने के विषय में बताया गया। तो हमें हर चैतन्य महाप्रभु साक्षात भगवान है और बहुत सारे शास्त्रों के जरिए उसको हमें स्वीकार करना चाहिए। कोई मूर्खतावश किसी को भी भगवान नहीं बना सकता। आगे श्री प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि बाद में यह पता चला कि भट्टाचार्य भी नवद्वीप क्षेत्र के रहने वाले थे और उनसे यह ज्ञात हुआ कि भगवान चैतन्य के नाना नीलांबर चक्रवर्ती सर्वभौम भट्टाचार्य के पिता के सहपाठी थे। इस रूप में तरुण सन्यासी चैतन्य महाप्रभु के प्रति भट्टाचार्य में वात्सल्य भाव उत्पन्न हुआ। भट्टाचार्य शंकराचार्य संप्रदाय के अनेक सन्यासियों के प्राचार्य थे और वे स्वयं भी उसी संप्रदाय से थे। अतः भट्टाचार्य चाहने लगे कि यह तरुण सन्यासी भगवान चैतन्य भी उनसे वेदांत का उपदेश सुने, यानी कि वो वेदांत का लेक्चर कर रहे थे। शंकराचार्य के ना संप्रदाय से थे, तो वो सोचते थे कि वो भी सुने, क्योंकि वो भक्त मानते थे और बहुत प्रेम कर रहे थे। और उन्हें जब ये पता चला कि चैतन्य महाप्रभु उन्हीं के गाँव के थे और उनके जो नाना नीलांबर चक्रवर्ती महाराज थे वो भट्टाचार्य जी के पिताजी के क्लास फेलो थे, तो थोड़ा प्रेम उनके जरिए उनके हृदय में उत्पन्न हुआ और चाहते थे कि कितना अच्छा सन्यासी है, ये मेरे से वेदांत का उपदेश सुने। शंकर संप्रदाय के अनुयायियों को सामान्य वेदांती कहा जाता है, लेकिन इसका अर्थ ये नहीं है कि वेदांत अध्ययन पर शंकर संप्रदाय का एक अधिकार है। वेदांत का अध्ययन सारे प्रामाणिक संप्रदायों द्वारा किया जाता है, किंतु उनकी अपनी अपनी व्याख्या है। लेकिन शंकर संप्रदाय वाले सामान्यतः वेदांती वैष्णवों के ज्ञान से अनभिज्ञ रहते हैं, इसीलिए सर्वप्रथम लेखक को ही वैष्णवों ने भक्ति वेदांत उपाधि से विभूषित किया। अब यहाँ पर श्री प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि देखो वेदांत पर सबका अधिकार है, खाली शंकराचार्य संप्रदाय का नहीं है। लेकिन वो लोग क्या सोचते हैं कि भाई वेदांत का जो प्रामाणिक संप्रदाय जो है वो शंकराचार्य है, लेकिन इसीलिए दूसरे जो वैष्णव वेदांती होते हैं ना उनको ज्यादा इम्पोर्टेंस नहीं देते हैं। लेकिन हम जो शास्त्र पढ़ रहे हैं वो भक्ति वेदांत उपाधि से विभूषित है, भक्ति वेदांत। ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी श्री प्रभुपाद जी के मुखारविंद से हम सुन रहे हैं, जो कि वाकई में वेदांत दर्शन हमें बहुत ही निकट से करवाता है। आगे श्री प्रभुपाद जी कह रहे हैं, महाप्रभु ने भट्टाचार्य से वेदांत पर शिक्षा ग्रहण करनी स्वीकार कर ली। अब महाप्रभु क्योंकि हमेशा नम्र रहते थे, वो ये नहीं कहते थे कि मुझे इतना ज्यादा आता है आपसे क्या सीखूं, वो भट्टाचार्य के से सीखने के लिए एग्री हो गए और वे दोनों भगवान जगन्नाथ के मंदिर में बैठ गए। भट्टाचार्य 7 दिनों तक लगातार बोलते रहे और महाप्रभु पूरे ध्यान से उन्हें सुनते रहे, उन्हें टोका तक नहीं। महाप्रभु की चुप्पी ने भट्टाचार्य के मन में संदेह उत्पन्न कर दिया, अतएव उन्होंने पूछा कि महाप्रभु ने उनकी वेदांत व्याख्या के विषय में कोई प्रश्न क्यों नहीं किया या कोई आलोचना क्यों नहीं की। आज क्या करते हैं हम लोगों को 4 लफ्ज बोलने आ जाए ना तो भी कोई अगर कथा करेगा या सीनियर कुछ बोलेगा ना तो उसके सामने अपनी किताब खोल लेंगे, अपना भाष्य शुरू कर देंगे, नहीं आपने ऐसे बोला आपने, मतलब थोड़ा सा भी ज्ञान अगर जहन में आ जाएगा ना तो भी अपने आप को बहुत बड़ा ज्ञानी प्रूफ करने के लिए बोलना शुरू कर देंगे। लेकिन चैतन्य महाप्रभु क्योंकि सारे शास्त्रों का मर्म जानते थे, लेकिन भट्टाचार्य जी का ये इच्छा थी कि वो उनसे सीखे, तो जब तक वो भट्टाचार्य सर्वभौम भट्टाचार्य बोलते जा रहे थे चैतन्य महाप्रभु चुप करके सुन रहे थे। इतनी शांति, क्योंकि सर्वभौम भट्टाचार्य चैतन्य महाप्रभु को जानते थे, उनके बारे में भी सुना था, और जब उन्होंने देखा कि कुछ बोल ही नहीं रहा है तो उन्होंने कहा आप क्यों बोल नहीं रहे हो, कोई आलोचना नहीं कर रहे हो, और जो मैं बता रहा हूँ उसके विषय में आप कुछ कह रहे क्यों नहीं हो, कोई प्रश्न क्यों नहीं कर रहे हो। महाप्रभु तो भट्टाचार्य के समक्ष अपने को मूर्ख विद्यार्थी बनाए रहे और ऐसा बहाना बनाया कि वे उनसे वेदांत इसलिए सुन रहे हैं क्योंकि भट्टाचार्य का विचार था कि यह सन्यासी का धर्म है, लेकिन महाप्रभु उनके भाषणों से सहमत नहीं थे। इससे उन्होंने इंगित किया कि चाहे शंकर संप्रदाय के तथा कथित वेदांती हो या अन्य संप्रदाय के जो श्लवेद व्यास के आदेशों का पालन नहीं करते, वे वेदांत के यंत्रवत विद्यार्थी हैं, वे महान ज्ञान से पूर्णतया अवगत नहीं होते। ये क्योंकि भट्टाचार्य क्या कह रहे थे कि आप सन्यासी हो, सन्यासी का धर्म क्या है, वेदांत सूत्र को जानो, लेकिन चैतन्य महाप्रभु बता रहे यदि आप पूरे वेदांत को समझ जाओ लेकिन फिर भी यदि वेद व्यास जी के आदेशों का पालन नहीं करते हो तो वेदांत यंत्रवत विद्यार्थी, यानी कि यंत्रवत विद्यार्थी यानी कि तोते की तरह खाली वेदांत को पढ़ो। भागवत महापुराण कहता है कि बाकी जो वेद हैं उन बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो कि भौतिक विचार हैं। भगवान भी भगवत गीता में कहते हैं या मैं माम पुष्पिता माचम प्रवर्तन्ति विपश्चित, के कहता यहाँ श्रीमद् भागवतम में पता है कहाँ लिखा, चैप्टर कैंटो 1 चैप्टर 1 टेक्स्ट नंबर 2 में, मतलब स्टार्ट में ही वेदव्यास जी ने कहा धर्म प्रोजित कर तवोत्र परमो, कि इस जो शास्त्र श्रीमद् भागवतम महापुराण है उसमें कोई चीज ऐसी नहीं है जो कहताव है। कहताव का मतलब क्या है, द्विसंग कहिए कहताव, आत्मवंदना, कृष्ण कृष्ण भक्ति बिना अन्य कामना, कृष्ण और कृष्ण की भक्ति के अलावा अन्य कोई भी कामना यदि है तो वो कहता है। तो यदि वेदांत पढ़ने के बाद, वेदांत को समझने के बाद हम कृष्ण भक्ति में सज्जन नहीं होते हैं, कृष्ण भक्ति में सम्मिलित नहीं होते, अपने हृदय में कृष्ण भक्ति का निर्माण नहीं कर पाते हैं, तो हमारे वेदांत अध्ययन का कोई भी लाभ नहीं होता है। वास्तव में शास्त्र अध्ययन का प्रमुख लाभ यही है कि हम कृष्ण प्रेम को प्राप्त कर सकें, लेकिन कोरा ज्ञान जिसमें सिर्फ हमें ज्ञान ही प्राप्त हो और कृष्ण के प्रति प्रेम उत्पन्न ना हो, तो ऐसा ज्ञान बिल्कुल बेकार है। यहाँ पर चैतन्य महाप्रभु बता रहे हैं कि जो शिल वेद व्यास जी के आदेशों का पालन नहीं करते, वे वेदांत के यंत्रवत विद्यार्थी हैं, वे महान ज्ञान से पूर्णतः अवगत नहीं होते। वेदांत सूत्र की व्याख्या व्यास जी ने स्वयं श्रीमद्भागवतम के मूल पाठ में दे दी है, जिसे भागवत का ज्ञान नहीं वे कठिनाई से समझेगा कि वेदांत का मर्म क्या है, यानी कि जो भागवतम नहीं समझ सकता, तो ये जो भागवतम है वो वेदांत का पका हुआ फल है। वेदव्यासी कैंटो नंबर 1 चैप्टर नंबर 1 टेक्स्ट नंबर 3 में कहते हैं, निगम कल्पतरु कलितं फलम शुकमुखादमृत द्रव संवृतम पिवत भागवतम रसमालयम मुहुरहो रसिका भुविभाविका। कि ये भागवतम मधुर रस है, जितने भी वेदांत हैं वेद के वृक्ष का पका हुआ फल है। तो जो भागवतम नहीं समझ सकता, जो भागवत का ज्ञान प्राप्त नहीं कर सकता, भागवत के जरिए कृष्ण प्रेम के लिए अपने हृदय में रुचि विकसित नहीं कर सकता, तो वो कभी भी वेदांत का मर्म नहीं समझ सकेगा। सार्वभौम भट्टाचार्य बहुश्रुत विद्वान होने के कारण लोकप्रिय वेदांतियों पर महाप्रभु के व्यंगात्मक आक्षेप को समझ गए, अतएव उन्होंने कहा कि यदि कोई बात समझ में नहीं आती तो पूछते क्यों नहीं। भट्टाचार्य उनके इतने दिन तक मौन रहने का प्रयोजन समझ गए। इससे स्पष्ट हो गया कि महाप्रभु के मन में कुछ और था, अतएव भट्टाचार्य ने उनसे प्रार्थना की कि वे अपने मन की बात प्रकट कर दें। अब क्योंकि इतने दिनों से चैतन्य महाप्रभु को सुनाए जा रहे हैं वेदांत बताए जा रहे हैं, लेकिन चैतन्य महाप्रभु चुप थे, तो उनको ऐसा लगा कि अब उनको कुछ बोलने का अवसर दिया जाए, वो पता तो चले वो क्या सोच रहे हैं, उनके हृदय में क्या है। इस पर महाप्रभु इस प्रकार बोले। अब महाप्रभु बोल रहे हैं, कितने सौभाग्य है कि हम चैतन्य महाप्रभु के शब्दों को सुन रहे। महाप्रभु कहने लगे, महाशय मैं वेदांत सूत्र के जन्मादस्य यत शास्त्र योनित्वात् तथा अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा जैसे श्लोकों के अर्थों को तो समझता हूँ, लेकिन जब आप इनकी व्याख्या अपने ढंग से करते हैं तो उन्हें समझ पाना मेरे लिए अत्यधिक कठिन हो जाता है। सूत्रों का प्रयोजन पहले से उन्हीं में वर्णित है, लेकिन आपकी व्याख्याएं उन्हें किसी और बात से प्रच्छन्न कर देती हैं। आप जानबूझकर सूत्रों का सीधा अर्थ ग्रहण ना करके अप्रत्यक्ष अपनी व्याख्याएं देते हैं, यानी कि अब जन्मादस्य यतोन्वयादि तरतस् जो हम पहला श्लोक पढ़ेंगे ना, उसमें क्या है, पूरा का पूरा भगवान श्री कृष्ण को सरेंडर करने के लिए। और तथा तो ब्रह्म जिज्ञासा, यानी कि आप मनुष्य बने हो, इसे आपको क्या करना है, ब्रह्म जिज्ञासा करना है कि ब्रह्म आया किधर से है, ब्रह्म किसका देश। तो चैतन्य महाप्रभु बोल रहे हैं कि ये सबको मुझे तो खबर है, लेकिन आप पता नहीं कैसे उल्टा सीधा बता रहे हो, जब आपकी व्याख्या सुनता हूँ तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आप डायरेक्ट से नहीं इनडायरेक्टली अपनी व्याख्या बता रहे हो, मुझे कुछ है ना उसमें समझ में नहीं आ रहा है, आप पता नहीं कैसे बता रहे हो। इस प्रकार महाप्रभु ने उन सारे वेदांतियों पर आक्रमण किया जो अपने स्वार्थ की पूर्ति के उद्देश्य से सीमित चिंतन शक्ति के अनुसार वेदांत सूत्र की व्याख्या पेशन के रूप में करते हैं। यहाँ पर वेदांत सूत्र जैसा प्रामाणिक साहित्य की ऐसी अप्रत्यक्ष व्याख्याओं की महाप्रभु द्वारा भर्त्सना की गई। अब महाप्रभु यहाँ पर क्या बताना चाह रहे हैं कि जो भी वेदांत सूत्र का की व्याख्याएं कर रहे हैं, जो उनके ऊपर लेक्चर दे रहे हैं, जो उनकी टीकाएं कर रहे हैं, यदि वो आपको डायरेक्ट से भगवत प्रेम की ओर नहीं लेकर जा रहे हैं, तो वो वेदांत सूत्र को फैशन के रूप में, बस अपनी सिक्का जमाने के लिए, अब ताकि मेरा इतना ज्यादा नाम हो, इसलिए बता रहे। बाकी अभी तक उन्होंने खुद भी वेदांत सूत्र को समझा नहीं है। आगे महाप्रभु ने कहा, श्रील वेदव्यास ने वेदांत सूत्र में उपनिषदों के मंत्रों के प्रत्यक्ष अर्थों का सारांश दे दिया है। दुर्भाग्यवश आप उनके प्रत्यक्ष अर्थों को ग्रहण नहीं कर रहे हैं, आप अप्रत्यक्ष रूप से उनका अर्थ भिन्न प्रकार से करते हैं। वेदों का प्रमाण निर्विरोध है और वह निसंशय है। जो कुछ वेदों में कहा गया है उसे पूरा पूरा स्वीकार करना चाहिए, अन्यथा यह वेदों के प्रमाण को चुनौती देना है। यानी कि वो जितने महाप्रभु बता रहे वेदांत के जो सूत्र है ना, अभी उपनिषदों में मंत्रों में जो भी है, वो वेदव्यास जी ने पूरा अच्छे तरीके से इतना क्लियर करके लिखा, आप उसको अपनी मर्जी से कैसे बता रहे हो? आप इस तरह तो आप वेदांत के प्रमाण को चुनौती दे रहे हो। शंख तथा गोबर दो भिन्न जीवों के हार्ट तथा विष्ठा है, लेकिन चूंकि वेदों ने उन्हें शुद्ध माना है अतएव लोग उन्हें शुद्ध मानते हैं, क्योंकि वेद प्रमाण है। अब यहाँ पर चैतन्य महाप्रभु वेदों के प्रमाणिक होने के विषय में बता रहे हैं कि देखो, शंख क्या है? हड्डी है, और गोबर क्या है? विष्ठा है। लेकिन क्योंकि वेद उन्हें शुद्ध मानते हैं, इसलिए हाँ, इन दोनों चीजों को भगवान की पूजा में ना स्वीकार करते हैं। तो जो वेद में लिखा हुआ है वो प्रमाण है। भाव यह है कि कोई भी व्यक्ति अपने अपूर्ण तर्क को वेदों के ऊपर नहीं लाद सकता। तर्क नहीं लादना है, वेदों में जो लिखा हुआ उसको एज इट इज स्वीकार करना है। यहाँ पर लोग क्या करते हैं, शास्त्र को पढ़ते हैं, गीता को पढ़ते हैं, भागवत को पढ़ते हैं, और अपनी मनमानी व्याख्याएं देते हैं। यानी कि शास्त्र पढ़ने के बाद भी यदि कृष्ण प्रेम प्राप्त नहीं हो रहा है तो फिर पढ़ने का कोई फायदा नहीं है। वास्तव में शास्त्र पढ़ने का एकमात्र यही उद्देश्य है कि हम तथा तो ब्रह्म जिज्ञासा, कि हम शास्त्र पढ़ के उस भगवान की ओर आए, जन्मादस्यतोन, जिससे यह सारी सृष्टि का उद्भूत हुआ है, जिससे ये सारी सृष्टि चल रही है, सृजन हो रही है, संहार हो रहा है, प्रलय हो रही, उसकी शरण में यदि नहीं जा रहा है, यदि हम भगवान की भक्ति को स्वीकार नहीं कर रहे हैं, तो फिर शास्त्र अध्ययन करने का कोई और तरीका नहीं है, कोई और वजह ही नहीं है। तो यहाँ पर प्रभुपाद जी कहते हैं, अपने अपूर्ण तर्कों को वेदों के ऊपर लादना नहीं चाहिए। वेदों के आदेशों को यथारूप में किसी लौकिक तर्क के बिना मानना चाहिए। वैदिक आदेश के तथाकथित अनुयायी वैदिक आदेशों की व्याख्याएं करते रहते हैं, और इस तरह वे वैदिक धर्म के विभिन्न दल तथा संप्रदाय स्थापित करते चलते हैं। भगवान बुद्ध ने प्रत्यक्ष रूप से वेदों के प्रमाण को स्वीकार किया और अपना निजी धर्म चलाया। अब जो भगवान बुद्ध यहाँ पर संसार में आए थे, तो उन्होंने क्या प्रत्यक्ष रूप से, यानी डायरेक्ट से बोला कि वेद गलत है, वेदों में जो लिखा हुआ है कि आप सेक्रीफाई करो, यज्ञ करो, ये सब गलत है? तो यहाँ पर श्री प्रभुपाद जी देखो कितनी सुंदर बात बता रहे, समझने की बात है। भगवान बुद्ध ने प्रत्यक्ष रूप से वेदों के प्रमाण को अस्वीकार किया कि नहीं, वेद गलत है, और अपना निजी धर्म चलाया और अपना धर्म चलाना शुरू कर दिया, वेदों को साइड में रखा। इसलिए वेदों के कट्टर अनुयायियों को बौद्ध धर्म स्वीकार्य नहीं हुआ। तो जो वेद मानते थे उन्होंने बोला नहीं, क्योंकि महात्मा गौतम बुद्ध जो है वो वेदों को ही मना कर रहे हैं, तो वो धर्म वो स्वीकार नहीं करने लगे, क्योंकि वेद प्रामाणिक है, वेदों को कैसे छोड़ सकते हैं। लेकिन वेदों के तथाकथित अनुयायी वेदों से अधिक हानि कर रहे हैं। अब आजकल क्या हो रहा है, वेदों को सेंटर में रख रहे हैं, तथाकथित अनुयायी मतलब वेदों को सेंटर में रख रहे हैं, बौद्धों में वेदों को प्रत्यक्ष रूप से इनकार करने का साहस था, लेकिन वेदों के तथाकथित अनुयायी ऐसे साहस नहीं कर सके। बौद्ध जो थे, जो बुद्ध धर्म, उन्होंने साफ बोल दिया कि भाई वेदों को हम लोग स्वीकार ही नहीं कर रहे, हम अपना मत चला रहे। लेकिन आजकल के जो तथाकथित अनुयायी हैं, वो ऐसा साहस नहीं कर सकते, वो वेदों को साइड में रखते नहीं है, यद्यपि वे अप्रत्यक्ष रूप से वेदों को स्वीकार, वेदों के सार आदेशों का उल्लंघन करते हैं। वो इनडायरेक्टली उल्लंघन कर रहे हैं और है ना, लेकिन फिर भी बोल रहे हैं हम वेदों के साथ, वेदों की बात मान रहे हैं, वेदों को सेंटर में रख के उसका उल्टा जो है ना बता रहे हैं सारा। वेदों के ऊपर टीकाएं करते हैं, अपनी मनमानी व्याख्याएं करते हैं। चैतन्य महाप्रभु ने इसकी बात सुना की, चैतन्य महाप्रभु ने कहा इससे अच्छे तो बोध थे, कम से कम ये बात को एक्सेप्ट तो किया कि हम लोग वेद नहीं मान रहे। आजकल के अनुयायी जो वेद मान रहे हैं वो क्या कर रहे हैं, वेदों को सेंटर में रख के भगवान को निकाल रहे हैं उससे, तो फिर वो तो और भी ज्यादा जहरीले हैं। इसीलिए कहते हैं मायावादी भाष्य सुनिले होए सर्वनाश। जो मायावादी भाष्य करते हैं, जो वेदों का तथा कथित टीकाएं करते हैं, वो यदि कोई उनके विषय उनके भाष्य को सुनता है तो उनका सर्वनाश होना निश्चित है। आगे श्री प्रभुपाद जी कह रहे हैं इस प्रसंग में महाप्रभु द्वारा दिए गए शंख तथा गोबर के उदाहरण अत्यंत ही उपयुक्त हैं। यदि कोई यह तर्क करे कि चूंकि गोबर शुद्ध है अतः विद्वान ब्राह्मण का मल उससे भी अधिक पवित्र है तो उसका यह तर्क स्वीकार्य नहीं होगा। गोबर तो मान्य होगा किंतु उच्च पद आसीन ब्राह्मण का मल अमान्य होगा। महाप्रभु ने आगे भी कहा। अब कुछ लोग क्या करते हैं, वेद को रखेंगे सेंटर में और बोले वेद में देखो ये चीज लिखी हुई है कि गोबर शुद्ध है तो जो ब्राह्मण है, अब गौ और ब्राह्मण को वेदों में एक साथ बताया गया, ठीक है, गौ ब्राह्मण हिताय से। अब ब्राह्मण का भी फिर मल है ना उतना ही शुद्ध है, लेकिन जो चीज वेद में लिखी है उसको एज इट इज उसमें अपनी डालना नहीं है, अपना कुछ अपनी तरफ से उसको मिश्रित नहीं करना है, बस जो लिखा हुआ है उसको एज इट इज स्वीकार करना है। और आगे चैतन्य महाप्रभु ने कहा वैदिक आदेश स्वतः प्रमाण है और यदि कोई संन्यास कोई संसारी प्राणी वेदों की व्याख्याओं को समझित करता है तो वह उनके प्रमाण को चुनौती देता है। वो वेदों के बस एज इट इज उसको स्वीकार करना है, उसमें कुछ एड नहीं करना है, तो फिर वो क्या हो जाता है, वेदों को चुनौती हो जाती है। अपने आप को शिला वेद व्यास जी की उपेक्षा अधिक बुद्धिमान समझना मूर्खता है। उन्होंने अपने सूत्रों में पहले ही अपनी बात कह दी है, अतएव कम महत्वपूर्ण व्यक्तियों से सहायता लेने की आवश्यकता नहीं है। जो कुछ लिखा है बस उसको स्वीकार करो, जो वेदांत जो वेदों में वेद व्यास जी ने लिखा है उससे बढ़कर क्या कोई और बता सकता है। जो वेद व्यास जी ने बताया बस उसी को स्वीकार करो। वेदांत सूत्र नामक उनकी यह कृति मध्यान्ह सूर्य की भांति प्रकाशित है और जब कोई सूर्य सृष्ट्य आत्म तेजवान वेदांत सूत्र पर अपनी व्याख्याएं करना चाहता है तो वह इस सूर्य को अपनी कल्पना के बादल से प्रच्छन्न करने का प्रयास करता है। उद्देश्य की दृष्टि से वेद और पुराण एक ही हैं, वे उस परम सत्य का सर्वप्रथम यहाँ पर श्री प्रभुपाद जी बोल रहे हैं कि वेदांत सूत्र पर उनकी जो व्याख्या है वेद व्यास जी की वो सूरज के समान है और यदि कोई अपनी व्याख्या उसके ऊपर डालता है तो सूरज के ऊपर बादल की तरह, जैसे सूरज के ऊपर जब बादल आ जाते हैं तो सूरज छुप जाता है तो रियल जो उनका उद्देश्य है वेदांत सूत्र बनाने का वो ढक जाता है। उद्देश्य की दृष्टि से वेद और पुराण एक ही है, वास्तव में वेद और पुराण अलग नहीं है। पुराण तो वेदों को है ना समझाने के लिए बनाए उन्होंने, वे उस परम सत्य का समर्थन करते हैं जो अन्य प्रत्येक वस्तु से महान है। और वेद पुराण में क्या बताया गया है उस शक्ति के विषय में जो सबसे महान वस्तु है। अंततः परम सत्य को भगवान ही अनुभूत किया जाता है जो परम नियंता है। यहाँ पर चैतन्य महाप्रभु श्रीमद् भागवतम महापुराण कैंट 1 चैप्टर नंबर 2 टेक्स्ट नंबर 11 के विषय में बता रहे हैं जिसमें वेद व्यास जी लिखते हैं वदन्ति तत्तत्व विदस्तत्वम यज्ञानम अद्वयम् ब्रह्मेति परमात्मेति भगवानेति शब्दते, कि जो परम सत्य को जानने वाले विद्वान हैं वो आध्यात्मवादी जो हैं वो इस दिव्य तत्व को ब्रह्म परमात्मा तथा भगवान के नाम से पुकारते हैं। और साथ साथ बताया कि वो उसके तीन फेस हैं, जो परम सत्य हैं उनके तीन फेस हैं। पहला फेस क्या है, ब्रह्म है, दूसरा परमात्मा है और तीसरा भगवान है, तो फिर हमें उसको एज इट स्वीकार करना चाहिए। वास्तव में यहाँ पर क्या बता रहे हैं कि अंततः परम सत्य को भगवान ही अनुभूत किया जाता है, कि जो परम सत्य की पराकाष्ठा है वो क्या है, भगवान है, और जो परम नियंता है, क्योंकि वो होना चाहिए ना, कोई व्यक्ति होना चाहिए, कोई स्वरूप होना चाहिए, तो फिर वो परम सत्य की पराकाष्ठा क्या है? कृष्ण है। अतः भगवान के अंदर क्या क्या गुण होने चाहिए? ऐश्वर्य, शक्ति, विख्यात, सौंदर्य, ज्ञान और त्याग। ऐश्वर्यस्य समग्रस्य वीर्यस्य यशस्य ज्ञान वैराग्यस्य एव शरणं भग इति भगवान इति गण। तथापि आश्चर्य है कि दिव्य भगवान को निराकार समझा जाता है। यहाँ पर चैतन्य महाप्रभु कहते हैं कि ये मायावादी वेदांती जो अपनी तथाकथित व्याख्याएं करते हैं, वो पूरा वेदांत वेद पढ़ने के बाद इतना भी नहीं समझ सकते कि भगवान ही वेदों की पराकाष्ठा है, भगवान ही परम सत्य की पराकाष्ठा है, जिनके अंदर ये सारे गुण परिपूर्ण मात्रा में होते हैं। महाप्रभु बहुत ही सुंदर और सीक्रेट टॉपिक्स अभी टॉपिक से बात कर रहे हैं, इसको हम कल कंटिन्यू करेंगे। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण, कृपया साथ रहिएगा।